आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लगभग 4600 करोड़ की लागत वाले 13 किलोमीटर हिस्से का कल करेंगे उद्घाटन। साइबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच करेंगे नमो भारत ट्रेन की सवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज अयोध्या में की पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा, कहा महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी। और प्रदेश में शीतलहर का असर जारी, घने कोहरे के चलते रेल और हवाई यातायात प्रभावित, कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मुक्ता शर्मा। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लगभग 4600 करोड़ की लागत वाले 13 किलोमीटर के हिस्से का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन की सवारी भी करेंगे। इस उद्घाटन के साथ दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर गाजियाबाद यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक पीयूष कुमार सिंह ने रूट डायवर्जन के मद्देनजर लोगों से कल कार्यक्रम के समापन तक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विधानसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद के होने वाले मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनपद के पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों से रणनीतिक विचार मंथन किया। श्री योगी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित सभागार में बैठक कर चुनाव की जीत के लिए चक्रव्यूह रचना को अंतिम रूप देने में उनके साथ प्रदेश के 7 मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, गिरीश यादव, मयंकेश्वर शरण सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, सतीश मिश्रा और जेपीएस राठौर भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि व्यवस्थित और समर्पित कार्य योजना में हर हाल में जीत दिलाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से वह 5 बार यहां आ चुके हैं। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जन कल्याण के अनेक कार्य किए हैं, इसका असर मिल्कीपुर में भी दिखाई देगा।
दोनों सरकारों ने जन कल्याण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से विशेष प्रयास किए हैं और उन प्रयासों का परिणाम आज सर्वत्र दिखाई देता है। अब मिल्कीपुर में भी खोजेंगे तो दिखाई देगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आश्रय स्थल और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी हासिल की। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने महाकुंभ के संबंध में अयोध्या में होने वाली तैयारियों को लेकर प्रस्तुतीकरण भी किया। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जयउर रहमान बर्क को बगैर नक्शा पास कराए घर निर्माण के मामले में प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। बर्क को 16 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना होगा। उपजिलाधिकारी वंदना मिश्रा ने बताया कि पहले उनके पास 27 दिसंबर तक का समय था। इस दौरान उनके द्वारा एक आपत्ति प्रस्तुत की गई। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि महाकुंभ को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सभी विभागों के समन्वय से कार्य चल रहा है।
हम लोगों ने जो चीजें घूम के देखी और ये पाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट तथा जो मैन पावर है, इनमें काफी अच्छा समन्वय है और जो अधिकारी इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हैं और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है। इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर गंगा और यमुना नदियों में बड़ी संख्या में जल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इन जवानों को अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस किया गया है। अंडरवाटर ड्रोन और सोनार सिस्टम जैसे इक्विपमेंट के माध्यम से जल पुलिस संगम के चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। पेश एक रिपोर्ट।
जल पुलिस योजना के तहत अब तक करीब 2500 जवान तटों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए हैं। 3 जल पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। तटों पर सुरक्षा की मॉनिटरिंग जल पुलिस के कंट्रोल रूम से की जा रही है, जबकि पूरे मेला क्षेत्र में 17 जल पुलिस सब कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। इस मैन पावर में मेले की शुरुआत से पहले और इजाफा किया जाएगा और इसमें करीब 1300 जल पुलिस के जवान और जुड़ जाएंगे। 8 किलोमीटर क्षेत्र में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। 2 फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन बनाए गए हैं, जहां किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए जवानों की तैनाती की गई है। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए 4 वाटर एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है, जो तत्काल राहत पहुंचाने में सक्षम है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। ज्ञानवापी प्रकरण में आज वाराणसी में जिला जज की अदालत में प्रकरण से संबंधित सारे मामलों को एक ही अदालत में शामिल किए जाने को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने इसके लिए अगली तारीख 18 जनवरी तय की है। वादी पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला जज ने मामले में पक्षकार बनने वाले लोगों को अगली सुनवाई की तिथि तक बताने को कहा है कि किस आधार पर उनको मामले में पार्टी बनाया जाए।
आज वस्तुतः हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में टीए यानी ट्रांसफर एप्लीकेशन बादनी लक्ष्मी देवी के द्वारा पड़ा हुआ है और उसमें प्रार्थना की गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जितने भी केस वाराणसी में चल रहे हैं सारे केस को क्लब करके हाई कोर्ट में ट्रायल किया जाए। इसी आशय पर सुनवाई थी और इसमें जो लोग टीए दे के पक्षकार बने हैं 1991 के मुकदमे में, उन सबसे जिला जज ने कहा कि आप हलफनामा दे के और किस बेस पे पार्टी बन रहे हैं वो स्पष्ट करिए। इस आशय पर हमारे पक्ष द्वारा मांग की गई तो उसके बाद माननीय न्यायाधीश महोदय ने 18 जनवरी की अगली तिथि सुनवाई की नियत की है।
मध्य कमान के जीओसी एनसी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने आज संग्राम 1857 एनसीसी साइकिलिंग अभियान का लखनऊ आगमन पर स्वागत किया। इस अवसर पर यूपी एनसीसी निदेशालय के कैडेटों ने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। यह अभियान 1 जनवरी 2025 को मेरठ से शुरू हुआ था, आने वाले दिनों में यूपी के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरेगा और अंत में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 की रैली में समाप्त होगा। केंद्र सरकार ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति देने का प्रावधान किया गया है। मसौदा नियमों पर अपने विचार MyGOV पोर्टल के माध्यम से 18 फरवरी तक व्यक्त किए जा सकते हैं। प्रदेश में ठंड और घने कोहरे के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसका असर रेल यातायात और हवाई उड़ानों पर भी पड़ा है। लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली कई उड़ानें आज देरी से उड़ी। वहीं लखनऊ से दिल्ली जाने वाली 2 उड़ानों को निरस्त कर दिया गया। कोहरे और मौसम के चलते 17 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आज देर रात घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ में 11 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे, वहीं अयोध्या में सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद रहेंगे। लखनऊ में खेली जा रही हैंडबॉल की IHF ट्रॉफी मेंस कॉन्टिनेंटल फिजेशिया में आज यूथ कैटेगरी में उज्बेकिस्तान ने कजाकिस्तान को हरा दिया। उज्बेकिस्तान ने 43 गोल किए जबकि कजाकिस्तान सिर्फ 34 गोल ही कर पाया। वहीं प्रतियोगिता के जूनियर कैटेगरी में उज्बेकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा दिया। वहीं भारत ने यूथ कैटेगरी में बांग्लादेश को हरा दिया। प्रदेश सरकार द्वारा पराली चलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पराली के बदले गोवंश खाद योजना चलाई जा रही है। अभियान के दौरान प्रदेश में लगभग 2,90,208 कुंतल पराली एकत्रित की गई है और किसानों को इसके बदले 1,55,380 कुंतल गोवंश खाद वितरित की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लगभग 4600 करोड़ लागत वाले 13 किलोमीटर हिस्से का कल करेंगे उद्घाटन। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच करेंगे नमो भारत ट्रेन की सवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज अयोध्या में की पार्टी पदाधिकारियों से साथ बैठक। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने आज प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। कहा महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी। और प्रदेश में शीतलहर का असर जारी। घने कोहरे के चलते रेल और हवाई यातायात प्रभावित। कई जिलों में 8वीं तक के स्कूल बंद। आकाशवाणी लखनऊ से प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।